Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
देखो ज्ञानी पुरुष जब साधारण भक्तों के सामने कोई बात कहता है तो अपने आप को ज्ञान की भूमिका में रहकर नहीं करता। वो साधारण व्यक्ति की भूमिका में ही रहकर उसकी बात करता है। जिस जो भूमिका में है उससे बात करनी हो तो आपने आपको भी उसी भूमिका में पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारी बात को वो समझेगा। सुनने वाला व्यक्ति साधारण भूमिका का है और हम बहुत उच्च भूमिका की बात करने लग जाएंगे, सुनने वाला सुन ही नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। और वो सुन सके समझ सके इसके लिए उसी की प्लेटफॉर्म में, उसी की भूमिका में पहुंचकर उसकी बात कहनी पड़ेगी। आदिगुरु हालांकि अपने आप समर्थ हैं, बहुत उच्च भूमिका के हैं, भक्ति के सिद्धांत में भी बहुत ऊंची भूमिका के हैं और ज्ञान के सिद्धांत में भी बहुत ऊंची भूमिका के हैं। वो उनकी भूमिका में आप और हम न ज्ञान की भूमिका में पहुंच सकते हैं न भक्ति की भूमिका में। हम तो बहुत नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, लेकिन हमसे जब बात करने लगते हैं तो हमको जो कुछ कहने लगते हैं तो वो भी हमारी भूमिका में आकर कह देते हैं। यानी हमारी मन की जो अवस्था है, मानो कि शंकराचार्य जी के मन की भी वही अवस्था है। तो हमें लगता है कि शंकराचार्य हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी भूमिका में बात करते हैं तो हमें लगता है कि शंकराचार्य जी हमारी बात कर रहे हैं। या साधारण व्यक्ति यह समझता है कि शंकराचार्य जी भी हमारी अवस्था से ग्रसित हैं। हमसे लोग कहते महाराज शंकराचार्य जी ऐसी बात करते हैं, वो तो साधारण सी बात है, वो तो हम लोगों की जैसी बात कर रहे हैं। वो तो उनकी भूमिका तो हमारी भूमिका है, तो ये नहीं समझते हैं कि हमको समझाने के लिए उस भूमिका में आए, ये नहीं समझते। नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना हो, वो नदी में कूदे बिना बचा नहीं पाएगा। कोई भी तैराक हो, नदी में डूबा हुआ कोई व्यक्ति देखा, वो किनारे में बैठकर इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा कहने से वो आने वाला नहीं है, आएगा? उसको नदी में ही कूदना पड़ेगा, उस डूबते हुए के साथ एक होना पड़ेगा, उसके हाथ पकड़नी पड़ेगी, उसके टांग पकड़नी, उसको अंगाल आलिंगन करना पड़ेगा और उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ तादात्म्यता किए बिना उसको किनारे में लाना संभव ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति कहेगा कि वो तो डूब रहा है, ये किनारे में बैठा हुआ क्यों कूद पड़ा उसमें, ने? इसको क्या पड़ी थी कूदने की, उसको बचाना है इसलिए कूदेगा। बच्चे को खाना खिलाना हो तो मां अपने आप को खाने का अभिनय करती है। बेटा तुम खाओ, तुम्हारी मां भी खा रही है, खाली हाथ मुख में ले जाएगी, वो शायद एक आधा टुकड़ा खा भी लेगी, और नहीं भी खाए तो भी खाने का अभिनय करेगी। ये देख तेरी मां भी खा रही है, चलो तुम भी खाओ, दोनों मां बेटे खाएंगे, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। और बच्चा खा रहा है और मां बिना खाए मुख चलाकर चबाती है, क्या चबा रही है, चबाने का अभिनय करती है। और उसको देखकर मां खा रही है तो मैं भी खाता हूं, बेचारा वो खाता है। एकादशी के दिन बच्चों को खिलाना हो तो मां खाएगी कि नहीं, लेकिन खाने का अभिनय करेगी कि नहीं है? खाने का अभिनय करते मुख में खाली हाथ ले जाकर मुख चलाकर खाने का अभिनय करने से क्या उसका व्रत टूटेगा, बोलो? लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है कि वो खा रही है, वो खा रही है तो मैं भी खाता हूं, बच्चा खा लेगा। इसलिए शंकराचार्य जी कभी कभी हमारी भूमिका में आकर बात करते हैं। नित्यानंद रसालयम सुरमुनी स्वांताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छम सद्विजसेवितम् कलुसरित सद्वासना विस्कृतम् संबोध्यान सरोवरम ब्रजमनो हंसावतंसं स्थिरम् किं क्षुद्राश्रय पल्वल भ्रमण सन् जाताश्रमं प्राप्स्यसि। मन को मनो हंसावतंसम, हंसों में सर्वश्रेष्ठ हंस राजहंस। कहीं कहीं मन को चातक पक्षी के रूप में भी वर्णन किया है, महाराजा भर्तृहरि ने मन को चातक पक्षी के रूप में वर्णन किया। सुनाया चातक पक्षी को, कह रहे हैं चातक पक्षी को संबोधन करके, और सुना रहे हैं अपने मन को महाराजा भर्तृहरि का यह श्लोक, भर्तृहरि का यह श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अंबोदाही बहवा ही संति गगने सर्वेपि नैतादृशम केचिद वृष्टिभिरार्द्रयन्ति धरणिम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। चातक पक्षी कहते हैं कि चातक पक्षी जमीन का पानी नहीं पीता है। चातक पक्षी का नियम है मर जाएगा लेकिन जमीन के पानी नहीं पीता। उसके पीछे एक इतिहास है, कहते हैं किसी ने उस पक्षी को मारा तो आकाश में उड़ते हुए वह पक्षी को जब किसी ने बाण मारी तो घायल होकर वह गिर गया किसी सरोवर में। उसके शरीर से निकलते हुए लोही रगत ब्लड रक्त जो है सरोवर के पानी में घुल गया तो सारा पानी लाल हो गया। उसको प्यास लग रही है पानी पीने के लिए, वो प्राण निकलने की तैयारी है, छटपटा रहा है, पानी पीना चाहता है, लेकिन देखता क्या है, सारा पानी रक्त से भरा हुआ है। तो ये क्या पिएंगे, इसलिए उसने उस पानी को नहीं पिया, परिणाम हो गया वो मर गया। शायद वो संस्कार उसके हृदय में बैठ गया, जन्मांतर में भी आज तक चातक धरती के पानी को अपनी लोही ही देखता है, अपना रक्त ही समझता है। उसके आंख में वो धरती का पानी हमेशा लाल दिखता है। बोलो, किसी एक चातक को हुआ था, सारे चातक धरती को ही धरती का पानी रक्त के रूप में दिखने लग गया, इसलिए वो पीता नहीं। ये कहावत है चातक पक्षी के बारे में। आकाश से बादलों से वृष्टि होती हुई जो पानी का बूंद है वो मुख को खड़ा करता है और उसके मुख में जो बूंद गिर गया वही उसके जीवन का आधार बनता है। साल भर उसी पानी से उसने जीना है। तो चौमासे में तो खूब उसको पानी पीने को मिलेगा, पीता रहेगा रोज ही, लेकिन चौमासा जाने के बाद वह तो संथाना कर लेता है ना? क्या कर लेता है? संथाणु कर लेता है। वो तो निर्जला एकादशी, वो चातक की जीवन भर निर्जला एकादशी हो जाती है, संथाणु हो जाता है। और जबकि पानी पीने की इच्छा है तो उसका नियम है कि वृष्टि के द्वारा जो पानी बादल से गिरते हैं उसी को ही पीना है। धरती के पानी तो रक्त मानता है, वो पीता नहीं है। इसलिए जब आकाश में चौमासा शुरू होने से पहले आकाश में जब बादलों के टुकड़े देखता है तो जोर जोर से कराता है, जोर जोर से आवाज लगाता है और बुलाता है, बादलों को बुलाता है और कहता है, याचना करता है, पानी दो मुझे, पानी दो मुझे, पानी दो। उस चातक पक्षी की इस अवस्था को महाराज भर्तृहरि ने अपने मन के साथ जोड़ा। हमारा मन भी ऐसा ही है भाई, जहां जाओ कृष्ण मंदिर जाओ तो भगवान कृष्ण से ही मांगना शुरू कर देते हैं। कोई कहते हैं पोता नहीं है, एक पोता दे दो। कोई कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं है, एक बेटा दे दो। और कृष्ण मंदिर से, कृष्ण से तो मांगा मांगा, अपनी सारी कामनाएं कृष्ण के सामने रख दी और मांगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि कृष्ण पूरा मेरी इच्छा पूरा करेंगे। मंगलवार को जब सिद्धि विनायक जाता है तो गणेश जी से भी वही मांगता है। क्या मांगता है? जो कृष्ण से मांगा था वही चीज मंगलवार को सिद्धि विनायक में जाकर मांगेगा कि भगवान एक बेटा दे दो, एक पोता दे दो, बेटी की शादी कर दो, बेटा की शादी कर दो, कुछ नहीं तो कम से कम बंबई में एक घर दिला दो। मांगना वो छोड़ता नहीं है। कृष्ण सोचते हैं चलो उसने उससे मांगा वो दे देगा, मैं क्यों दूं? तो गणेश जी से मांगा तो गणेश जी देने की तैयारी कर रहे थे, इसको देना चाहिए, बेचारा मांग रहा है। तब तक फिर बाबुलनाथ गया और शिव जी से कहने लगा भगवान मुझे बेटा दे दो, बेटी दे दो, पोता दे दो, पोती दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, यूं दे दो, त्यूं दे दो। गणेश जी समझते हैं कि वो बाप से मांग रहा है तो हम क्या दें, चलो वही देंगे। देने की तैयारी कर रहे थे गणेश जी बेचारे, तो वहां जाकर मांगा तो वो देंगे, हम क्यों देंगे, चलिए। और जितने से तुम मांग रहे हो वो सब के सब तुम्हें देने लग जाए तो तुम संभाल भी नहीं पाओगे। वो संभाल पाओगे? पहले कृष्ण से बेटा मांगा, फिर गणेश से मांगा, फिर सिद्धि विनायक से गणेश से मांगा, फिर शिवजी से मांगा, फिर चलते चलते चले गए अंबाजी, तो अंबाजी से भी मांगा, ये सब के सब तुम्हें यदि देने लग जाएं कितने बेटे होंगे तुम्हारे, संभाल पाओगे? कितनी बेटियां होंगे तुम्हारी, संभाल पाओगे? कितने बहुएं होंगे तुम्हारी, संभाल नहीं पाएंगे? हम ये विचार नहीं करते हैं कि हमने एक से मांग ली तो अब और से नहीं मांगना है। हमको ये भरोसा ही नहीं है कि वो हमने मांगा उससे वो दे ही देगा। वो देने में सक्षम है? यदि ये भरोसा होती तो कृष्ण के मांगने के बाद, द्वारिकाधीश से मांगने के बाद सिद्ध विनायक से मांगते? बोलिए, मांगना हमारे आदत पड़ गया है, हमारे मन की अवस्था यही है। जैसे चातक पक्षी आकाश में एक बादल का टुकड़ा देख लिया कि उसने मांगना शुरू कर दिया। महाराजा भर्तृहरि ने उस पक्षी को और अपने मन की अवस्था को तुलना की, दोनों की अवस्था एक ही है। तो पक्षी को सुनाया और समझाया अपने मन को, सुनाया पक्षी को, समझाया किसको? अपने मन को। रे रे चातक सावधान मनसा, ये चातक तो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। मित्र, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, दुश्मन नहीं हूं। क्षणम सूर्य सूर्यता, अरे भाई मेरी बात थोड़ी तो ध्यान से सुन लो। क्या कहने चाह रहे हो भैया? मान लो चातक ने सुन ली, क्या कहना चाहते हो? अंबो दाही बह ही संति गगने, ये बात ठीक है कि आकाश में पानी देने के लिए पानी को वहन करके उड़ने वाले बहुत से बादल के टुकड़े हैं, सभी अंबोदा है, है? सभी अंबोदा हैं बादल, लेकिन सर्वे भी नहीं था दृशा, आकाश में दिखने वाले सभी बादल एक समान नहीं होते। के चिद वृष्टि भीरार्द्रयंती धरणिम, उन बादलों में से कोई कोई बादल तो तुम्हारी याचना के अनुकूल वृष्टि भी ही अपने आप को सारा जीवन अपना अस्तित्व ही न्यूछावर करके सब कुछ वृष्टि कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, खाली कर देते हैं, अपना अपना अस्तित्व खाली कर देते हैं। आर्द्रयंती धरणिम, सूखे से आक्रांत पृथ्वी को हरा भरा सस्यशालिनी कर देते हैं, अपना जीवन न्यूछावर करके धरती को हरा भरा बना देते हैं। लेकिन उन्हीं बादलों में से कुछ बादल ऐसे हैं, गर्जंती के चित वृथा, कोई कोई बादल तो आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं, देखते देखते उड़ के कहां पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाए, कहां गया, कहां गए, खो गए, गायब हो गया। इसीलिए यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो, जो बादल दिखा उसी के सामने मुझे पानी दो करके ये दीन याचना मत करो। जो पानी दे सके उसी के सामने पानी की याचना करो, उसी बादल के सामने पानी की याचना करो जो तुम्हें पानी दे सके और तुम्हारी तृष्णा को शांत कर सके। उन बादलों के सामने तुम अपनी वेदना मत पोखो, है? हमारी आदत पड़ गई है, हमारी जो है ना आदत उसी चातक की तरह है। हमें कोई समस्या पड़ती है तो जो भी दिखता है उसको हाथ पकड़ के अपनी समस्या और रोना रो ही देते पट से। और कुछ लोग तो तुम्हारी समस्या से सहानुभूति रख सकते हैं, रखने वाले मिलेंगे, और कुछ तो तुमने घंटों लगाकर अपनी वेदना अपनी समस्या उसके सामने रखी और तुम्हारा उपहास करके हंस के चल पड़े। एक घंटे तक तुम अपनी वेदना को उनके सामने रखने का प्रयोजन क्या हुआ, बोलो? हैं? इसीलिए जो तुम्हारे भावना से परिचित हो सके उस व्यक्ति के सामने ही अपनी समस्या, अपनी वेदना पोखना, अपनी वेदना रखना है? जो तुम्हारी हृदय से एक न हो सके उनके सामने अपनी समस्या नहीं रखना भाई। महाराज भर्तृहरि ने चातक के माध्यम से मन को समझाया, हे मन, जो भी तुम्हारे सामने आया उसी के सामने याचना नहीं करना भाई। नहीं भटकना इधर उधर। इसी तरह शंकराचार्य ने यहां मन को पहले तो बहुत बड़ा बना दिया। भर्तृहरि ने तो चातक पक्षी की उपमा दी, लेकिन शंकराचार्य ने मन को तो राजहंस की उपमा दी है। ये मन राजहंस, मनोहंस अवतंस, राजहंस हंसावतंस। तुम जो है इतत तत माधाव, तुम इधर उधर भटकना नहीं। कहां जाएं फिर? नित्यानंद रसालयम उसी के साथ ही कह दिया है, संबुद्ध्यान सरोवरम ब्रज, इधर उधर मत भटको। तुम राजहंस हो, पहाड़ के चोटियों में तुम्हारा काम नहीं है। तुम राजहंस हो, जंगलों में तुम्हारा काम नहीं है। तुम राजहंस हो, बंबई में तुम्हारा काम नहीं है। तुम राजहंस हो तो सौराष्ट्र में तुम्हारा काम नहीं है, फिर दिल्ली में, बोले वहां पर भी नहीं है, फिर कहां है महाराज? संबुद्ध्यान सरोवरम, बस भगवान शिव के ध्यान रूपी सरोवर में ही तुम्हारा काम है। राजहंस तो सरोवर में जाएगा, कौन सा सरोवर? मान सरोवर, संबुद्ध्यान। इसीलिए मान सरोवर की महिमा है। वो कैलाश पर्वत मान सरोवर से 40 किलोमीटर दूर है। कैलाश पर्वत मान सरोवर से 40 किलोमीटर दूर है, और मान सरोवर जो है 16,000 फीट की हाइट में है। इतनी ऊंचाई में इतना बड़ा सरोवर, 80 किलोमीटर की जो है परिधि है, उसकी परिक्रमा कितनी है? 80 किलोमीटर की परिक्रमा है। उमा तो गई है मेरे साथ, नहीं बसंत भाई भी गए थे, नहीं हाँ ये आप भी गए थे। हमारे चिमन भाई तो पैदल ही गए थे इंडिया के बॉर्डर से, बहुत पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था है? तो यहां से कैलाश मानसरोवर गए, नेपाल का रास्ता खुला नहीं था उस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ही जाना पड़ता था। तो चिमन भाई गए, उनको पता था हम दिल्ली में कथा कर रहे हैं, तो सिलेक्ट हो गए। जब जाना तैयार हुआ तो हमारे पास आए, दर्शन किया, गए, जाके फिर वापस आए तो फिर हमसे मिले थे, तो हमें याद है। तो इतनी ऊंचाई में इतना बड़ा सरोवर है, वहां उस सरोवर में हमेशा कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब पड़ा रहता है। 40 किलोमीटर दूर जो कैलाश पर्वत है उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन उस सरोवर में हमेशा पड़ा रहता है। इसीलिए कैलाश पर्वत माने मान सरोवर को क्या हुआ? संबुद्ध्यान सरोवर। मानो जब आप ध्यान करने लगोगे भगवान का, तो जिस मूर्ति का ध्यान करोगे उसकी छवि तुम्हारे हृदय में आएगी कि नहीं? मानो सरोवर हमेशा शिवजी का ध्यान कर रहा है और शिवजी उसके हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यानी प्रकट हो रहे हैं, प्रतिफलित हो रहे हैं। और हे मन रूपी राजहंस, तुम उसी सरोवर में जाओ जहां शंभुध्यान सरोवरम। अर्थात हे मन, भगवान का ध्यान के अलावा और इधर उधर मत भटको, बस ध्यान को ही तुम सरोवर बनाओ, मानस सरोवर बनाओ, और वहीं तुम्हें आनंद आएगा। साधारण हंस होते तो तुम छोटे मोटे ताल तलैया में भी गुजारा होता, तुम तो राजहंस हो। राजा की शोभा तो राजमहल में ही होता है। जैसे राजा की शोभा राजमहल में है, इसी तरह हंस की शोभा सरोवर में है और राजहंस की शोभा शंभुध्यान सरोवर में। शंभुध्यान सरोवरम ब्रज मनो हंसावतंसम शंभुध्यान सरोवरम ब्रज। हे मन रूपी राजहंस, तुम शंभुध्यान भगवान शिव के ध्यान रूपी सरोवर में जाओ। कैसा है वो सरोवर, शंभुध्यान सरोवर? उसकी विशेषता, शंभुध्यान सरोवर की विशेषता है, नित्यानंद रसालयम। वो पानी से भरा नहीं है, नित्य आनंद रूपी रस से भरा हुआ है। वो साधारण जल नहीं है, वो जो आनंद ही जल है। आनंद रसालयम, नित्य आनंद रसालयम। महाराज सरोवर सूख गया तो फिर हम कहां चले जाएंगे? बोले वो सूखने वाला नहीं, नित्य। तुम छोटे मोटे तालाब में जाओगे तो पानी नहीं, बारिश नहीं होगी दो एक साल, तो फिर वो सूख जाएंगे। पहले हम बंबई में रहते थे तो जून महीने भर भी पानी न पड़े, जुलाई 10 तारीख तक भी बारिश नहीं हुई एक बार, तो बंबई में हाहाकार हो गए। बोले सब तालाब सूख गए, पानी सप्लाई करने वाले जो तालाब है, भातसा बैतरणा, ये हम बंबई को पानी सप्लाई करने वाले, ये सब तालाब हैं, सरोवर हैं। बोले पानी घट गया, सूख गया, सब बंबई खाली करो, खाली करो, एक घर में एक व्यक्ति बाइक और कोई नहीं, सब जाओ, भागो भागो भागो। बोलो बंबई के आबादी को 75% खाली किया, नोटिस दे देकर, सूचना दे देकर खाली करो। स्कूलें सब बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गए, हाँ एक साल तो ऐसा हो गया था, फैक्ट्रियां सब छुट्टी, जाओ सब गांव चले गए, भागे। बारिश हुई और सरोवर का पानी स्तर बढ़ा, तब फिर सब लोग आए। तो सूख सकता है भाई, राजहंस ने कहा होगा जिस सरोवर में जाने की बात तुम कह रहे हो, शंभुध्यान सरोवरम, वो तो सूखने वाला होगा। बोले नहीं, नित्यम, कभी नहीं सूखने वाला है वो। शिव पुराण में मानस सरोवर का चर्चा है, वो सृष्टि के आदि में वह मानस सरोवर से ही सारी सृष्टि शुरू हुई है। मानस सरोवर शक्ति पीठ है, ध्यान देना, इसीलिए कैलाश का प्रतिबिंब पड़ता है ना, वो शक्तिपीठ है। तुम्हारे जो 52 शक्तिपीठ हैं सती के शरीर गिरकर, उनमें से एक शक्तिपीठ है सरोवर, मानस सरोवर। और इसीलिए कि कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब वहीं रहता है, आगे वर्णन आएगा, प्रसंग में हम आपको इसकी व्याख्या करेंगे। नित्यानंद रसालयम, समुद्र का पानी तो खारा है भाई, लेकिन ये शंभुध्यान सरोवर का पानी नित्य आनंद रूपी रस से भरा हुआ है। जब शुगर हुआ शरीर में, इस शरीर में मधुमेह का सिम्टम दिखाई पड़ा तो पहली बार टेस्ट किया तो 400 हो गया था।